ओम शांति। इस्लाम धर्म में 18वीं शताब्दी बगदाद में एक बहुत ही बुद्धिमान प्रसिद्ध व्यक्ति कभी हुआ था और उसके जीवन में एक घटना का वर्णन है। जब वो 10 साल का था, वहां एक व्यक्ति आता है जो कि नास्तिक होता है और जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है, और यहां वहां जाता है और बड़ा अहंकारी होता है, और यहां वहां जाकर सबको अपने प्रश्न पूछता है, और ऐसे उसके प्रश्न होते हैं कि उनका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, और सबको वो अपमानित करता है। उसका जैसे यही काम था। तो एक बार वो बगदाद में आता है और वहां पर चुनौती देता है सबको कि मेरे पास जो प्रश्न है, यदि तुम उसका उत्तर नहीं दे सको तो अपनी हार स्वीकार कर लो। सब लोग उससे डरते हैं उसके शब्दों से, क्योंकि वो बड़ा बुद्धिमान भी होता है और उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकता, और वो नास्तिक होता है और उसके सारे प्रश्न धर्म के संबंधित और ईश्वर के संबंधित होते हैं। तो एक बार जब वो इस तरह चुनौती देता है तो एक 10 साल का बच्चा सामने आता है और वो कहता है कि मैं उत्तर दूंगा। वो हंसता है, तुम क्या उत्तर दोगे मेरे प्रश्न का? वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, जो भी पूछना है मुझसे पूछो और मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो वो उसको एक छोटी पहाड़ी पर, टीले पर ले जाता है और वो व्यक्ति जो नास्तिक होता है वो उस पहाड़ी पर चढ़ता है और सारा गांव वहां पर इकट्ठा होता है और वो छोटा बच्चा पूछता है, पूछो अपना प्रश्न क्या है। तो वो अपना पहला प्रश्न पूछता है, मुझे बताओ इस समय तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है, राइट नाउ, अभी इस समय। उसके ऐसे प्रश्न होते कि आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया होता है। वो कहता है, यदि तुम मानते हो खुदा को तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा खुदा इस समय क्या कर रहा है। तो वो छोटा बच्चा कहता है, मैं बताता हूं पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आप नीचे आओ, मैं ऊपर जाता हूं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वो कहता है, मुझे उत्तर चाहिए। वो कहता है, उत्तर मैं दूंगा, पहले आप नीचे तो उतरो। तो वो नीचे उतरता है, वो छोटा बच्चा उस पहाड़ी के टीले पर ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है, खुदा यही करता है, जो नास्तिक होते हैं, जो काफिर होते हैं उनको नीचे करता है और जो उसे मानने वाले हैं उनको ऊपर कर देता है। तो उसको बड़ा अपमानित महसूस होता है। तो बोलता है, जो भी हो, अभी मेरा दूसरा प्रश्न सुनो, और दूसरा प्रश्न तुम नहीं जवाब दे पाओगे, खुदा से पहले क्या था, खुदा जो है उसके पहले क्या था वो मुझे बताओ। तो वो छोटा बच्चा कहता है, क्या आप गिनती कर सकते हो 1 से 10 तक? वो कहता है, हाँ। तो कहता है, उल्टी गिनती करो, 10, 9, 8, 0 तक आता है। वो कहता है, आगे? वो कहता है, आगे कुछ भी नहीं है। बोलते, शून्य से पहले क्या है? वो कहता है, कुछ भी नहीं है। वो कहता है, अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं है, वही संपूर्ण है, वही परम है, वही एब्सोल्यूट है, उसके पहले कुछ होता ही नहीं है। जैसे शून्य से पहले कुछ भी नहीं है, वैसे उसके पहले भी कुछ नहीं है, उससे ही तो जगत की शुरुआत है। तो उसको फिर थोड़ा सा धक्का लगता है और थोड़ी सी चोट पहुंचती है अंदर। वो कहता है, मेरा तीसरा प्रश्न सुनो, अल्लाह किस ओर देखता है? अल्लाह, खुदा किस ओर देखता है? तो वो कहता है, एक मोमबत्ती ले आओ और उसको जलाओ। और वो उससे पूछता, बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर जा रहा है? वो कहता है, सब ओर जा रहा है। तो उसी तरह अल्लाह भी सभी ओर देखता है, उसकी आंखें, उसके हाथ सर्वत्र है। ऐसी बात उसमें आई है। ये जो छोटा बच्चा था, इस्लाम धर्म में बड़ा नाम है इसका, अबू हनीफा। अबू हनीफा, अबू नहीं, अबू अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा। ये बड़ा ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति 8वीं शताब्दी में कभी हुआ था, और उसके जीवन की ये बचपन की घटना है। तो वो जो व्यक्ति आया था वो बड़ा शर्मिंदा हो जाता है और फिर बाद में खुदा को मानने वाला बन जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है उसका भी। सत्रह तारीख संडे अव्यक्त वाणी पहला भाग हमने देखा, विचित्र पाप, विचित्र बच्चे, विचित्र पढ़ाई और विचित्र प्राप्तियां। दूसरा भाग जो था वो कल देखा था, क्या था उसमें? कंपैरिजन, तुलना थी, हम में क्या है और संसार की आत्माएं क्या है, हीरे तुल्य हम कैसे है। तीसरा भाग आज देखेंगे, पार्टियों से मुलाकात। उसमें बाबा ने स्वराज अधिकारी की बात की है, हमारी जो भी इंद्रिया है वो भी ऐसी अहंकारी बन गई है कि उनके कई बार प्रश्न हमारे पास रहते नहीं है। सूक्ष्म इंद्रिया और स्थूल इंद्रिया दोनों जन्म जन्म से विकारों में डूबी रही और विकारों का अहंकार उनमें इतना अधिक है कि कई बार उनके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास रहते नहीं है। सूक्ष्म जैसे मन के कुछ प्रश्न है, विकारों से संबंधित, मन जस्टिफाई करता है, रैशनलाइज करता है कि ये तो सभी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, ये तो नेचुरल है, बाबा कह रहा है संपूर्ण प्यूरिटी नेचुरल है, ये सब नेचुरल नहीं है। आज की मुरली में वर्थ प्रश्न उत्तर में उत्तर की आखिरी लाइन क्या है आशीष भाई? शरीर को देखने से क्या होता है? विकारी ख्यालात चलते हैं। शरीर को देखने मात्र से क्या होता है? विकारी ख्यालात चलते हैं। ये आंखों को आदत है देखने की, अगर उनको कहो नहीं तो वो जस्टिफाई करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं आत्मा से कि आत्मा ही निरुत्तर हो जाती है, आंखें भी अहंकारी हो गई है, ये कान भी अहंकारी बन गए हैं, ये इंद्रिया भी अहंकारी बन गई है। तो ये जो पूरी मुरली, ये जो पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने एक ही चीज कही है, स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अर्थात सत्ता और सत्ता अर्थात शक्ति, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात शक्तिशाली। और इसमें कहा कोर्ट क्या करो, दरबार लगाओ, और दरबार में किन किन को रखो, कौन से मंत्री को क्या पूछो, कितना बड़ा दरबार है, ये बड़ा दरबार है, बड़ा सा दरबार लगाना है रोज। बाबा ने कहा मन मंत्री से पूछो, कान मंत्री से पूछो, एक एक डिपार्टमेंट में पूछो सब ठीक चल रहा है, डिपार्टमेंट है ना एक एक का, आंख का डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, जैसा होता है वैसे यहां पे भी डिपार्टमेंट्स है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकियाट्री डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक चल रहा है कार्डियोलॉजी में कि नहीं? तो बाबा ने कहा प्रश्न पूछो, दरबार लगाओ, सोचो फिर करो, जो बिना सोचे कहते करते हैं उन्हें बाबा ज्ञानी नहीं कहते, ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं। तो दरबार लगाना है और दरबार लगाकर प्रश्न उत्तर करने, और वो जो जो प्रश्न पूछेगा उसको यथेच्छ उत्तर देंगे तभी वो शांत होते हैं इंद्रिया, उनको दबा देंगे तो कुछ नहीं होगा। लोगों ने इंद्रियों के साथ दो चीजें की है, एक तो भोग का मार्ग और दूसरा दमन का मार्ग। जो भोग में डूबे रहे वो तो दुखी रहे ही रहे, फिर कुछ लोग थे उन्होंने समझा ये भोग से कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ो इन भोगों को, और उन्होंने दबाना चालू कर दिया इंद्रियों को, पर दबाने के बाद और ही ज्यादा इंद्रिया तो शक्तिशाली हो गई दबा दबा कर, कहीं कहीं से निकलने लगे, स्वप्न में निकलने लगा और उन्होंने भी सत्य को नहीं पाया। तो इंद्रियों के साथ ये दोनों ही मार्ग गलत हो गए, ये सन्यासियों का मार्ग, ये गृहस्थी जिसमें डूबे रहे। दमन से कुछ भी नहीं हुआ, सप्रेशन से कुछ भी नहीं हुआ, रिप्रेशन से इंद्रिय जीत नहीं बन पाए। तो बाबा ने कौन सा मार्ग बताया है, तीसरा बीच का, क्या नाम है इस मार्ग का? ज्ञानमयी प्रेममयी समझ। इंद्रियों को दबाना नहीं, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, ज्ञान और प्रेममयी समझ के द्वारा उसको समझाना, आप ही उसको वैराग आ जाएगा, फिर कुछ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी उसके साथ, स्वत ही वैराग आएगा। तो ये जो दरबार है बहुत बड़ा दरबार है, इसमें 32 मंत्री है। 32 कहां से हो गए? कैबिनेट। बहुत बड़ा दरबार है। सबसे पहले तो ऊपर क्या है, आत्मा, ये है आत्मा राजा। दरबार देखा होगा ना, राजाओं का कैसा होता है, इधर मंत्री या वजीर या पहले जमाने में अमात्य, अमात्य रहते थे, कभी वजीर रहते थे, कभी मंत्री, अलग अलग नाम है, मिनिस्टर्स अभी के जमाने में, MPs। हाँ तो हमने तो लगाया है ना कई बार, राजे महाराजे जब हम थे तब। तो सबसे पहले तो मन बुद्धि संस्कार, इनसे बात करनी है। हमारे दरबार में राइट साइड में ये तीन लोग बैठे हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन से बात करनी है, हे मन कहां भटक रहा है, हे मन तुझे चाहिए क्या। एक अभ्यास बड़ा अच्छा अभ्यास है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं मन में, किसी को भी दबाना नहीं, ये सोचना कि ये पूरी हो गई, अब क्या फायदा, क्या मिला। मन चाहता है कि वो मुझे मिल जाए, मन चाहता है कि गुलाब जामुन खा रहा हूं, ठीक है, तो देखना कि मैं खा रहा हूं और खा के पूरा हो गया, अब आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, ये देखना कि मैंने खाया, मान लिया। जैसे उस दिन भी बताया था ना, एक गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन, वो होटल में गया और रोटी ली और एक कटोरी ली, और कटोरी खाली थी तो रोटी का टुकड़ा उस खाली कटोरी में डूबो के खा रहा था। तो किसी ने पूछा, तुम किसके साथ खा रहे हो, सब्जी तो है ही नहीं इसमें। उसने कहा, सब्जी मैंने मान ली है। मैथमेटिक्स में माना जाता है, सपोज एक्स इक्वल टू वाई, तो वैसे मैंने कटोरी में सब्जी है ये मान लिया है, हाइपोथेसिस। तो ये देखना कि मेरी जो सबसे ज्यादा इच्छा है, लौकिक इच्छा है, सांसारिक इच्छा है, भोग विलास की इच्छा है, कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए और मैं उसके साथ घूम रहा हूं। जैसे कुछ दिनों पहले वो अनादरा में एक बड़ा अच्छा रमणीक दृश्य हमको दिखा, वहां पर बहुत सारे युगल बैठे थे अलग अलग जगह पर, कोई किधर कोई कुधर, तो दो नवयुवक आए गाड़ी पर मोटरसाइकिल पे और उन्होंने सबको देखा और एक उसमें से चिल्ला रहा, हे खुदा मेरे लिए भी किसी को भेज। बड़ा दुखी हो गया सबको देखकर, कोई मेरे साथ नहीं है, सबके साथ कोई ना कोई घूम रहा है, मेरे लिए तो कोई भेज। यहां तो खुदा खुद आ गया। तो मन से बात करना और देखना मन को जो चाहिए, एक दृश्य बनाना, ये चाहिए ना, उसको मिल गया, क्या मिला, कुछ खुशी हुई, हुई थोड़ी बहुत, नेक्स्ट व्हाट, फिर दूसरी इच्छा हो गई, अब अगली इच्छा उत्पन्न हो गई, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो मिल गया, आगे क्या। इस तरह से बात करनी है मन से। दूसरा बुद्धि से, बुद्धि किस तरह से जजमेंट करती है, बुद्धि को सत्व प्रधान सात्विक बुद्धि बनाना है, विशाल बुद्धि, रिफाइंड बुद्धि, सत्व प्रधान बुद्धि, राइटियस बुद्धि, दिव्य बुद्धि, निर्विकारी बुद्धि, पारस बुद्धि, ढेर सारी लिस्ट है, डायमंड बुद्धि, तो बुद्धि से बात करना कि ये तू जो कर रही है ये ठीक है तेरे लिए, ये गलत है। संस्कारों से बात करना, ये मेरे संस्कार कितना प्रबल है तू, अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना, उसमें बहुत पावर है। सारे तर्क, सारा ज्ञान, सारा योग एक धक से उठा के फेंक देता है, इतनी पावर है उसमें। हम कितना भी इधर जिम खाने में जा जा के शक्तिशाली बन के गए, वो हाथी आया ऐसा सूंड पे पकड़ के फेंक दिया और हम बेचारे इतना शक्तिशाली हाथी की तरह है वो संस्कार जन्म जन्म का। एक एक इंद्रियों में विकार ऐसे भरे पड़े हैं, बड़े शक्तिशाली है वो। छोटा मोटा ज्ञान योग कर लिया, थोड़ा बहुत चिंतन विंतन कर लिया, अमृत वेला बाबा से बातें कर ली थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत मुरलियां पढ़ ली, वो उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जस तस है। ऐसे उठा के फेंक देता है कि बस थोड़ा युक्ति से उसको हराना पड़ेगा, पीछे से आक्रमण कुछ करना पड़ेगा। सीधा आक्रमण करने जाओगे संस्कार पर, जैसे प्रतिज्ञा कर ली मैं कल से 2 बजे उठूंगा, बहुत हो गया ये, एक दिन उठा और दूसरे दिन सीधा 8 बजे सारा ही गया, या 2 बजे उठा गया उसके बाद में नाश्ता किया, 9 बजे सोया तो सीधा शाम को आंख खुली, पूरा दिन चला गया, बड़ा भारी पड़ गया 2 बजे उठना। लोगों के इस तरह के अनुभव 18 जनवरी के बहुत है, कहते फालतू उठ गया 2 बजे, पूरा दिन गड़बड़ हो गया, जिनको आदत ही नहीं है, पर उस दिन नशे में सब लोग 2 बजे 2 बजे 2 बजे, मुझे भी 2 बजे, 2 बजे उठा, अच्छा ही हो गया, सब कुछ किया और बाद में कहां खो गए पता ही नहीं, सिर दर्द दिन भर। हीरोइक एफर्ट्स, तो ये 3। उसके बाद में है 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 3 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिया। कौन कौन सी है ज्ञानेंद्रिया? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। कान से शब्द, आंख से रूप, नाक से गंध, जिह्वा से स्वाद और त्वचा से स्पर्श। ये 5ों को वश में करना है, क्योंकि ये सब हमको बाहर की तरफ ले जाते हैं, ये सारी इंद्रियां, इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है 5ों को। इन 5ों को ही वश में, बाबा ने कहा हे कान मंत्री ठीक चल रहा है सब, हे आंख मंत्री सब ठीक चल रहा है, हे जिह्वा कहीं धोखा तो नहीं दिया, सोचा था आज बिल्कुल संयमित भोजन रहेगा, पर क्या करूं सामने ऐसी चीज आ गई कि मना ही नहीं कर पाए। आज मालपुआ, आज सदगुरुवार कल ही सोचा था, कल ही डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल हलवा बिल्वा तेल एकदम कम कर दो, पूरा अमृत वेला से पूरा संकल्प करके उठे और सारा संकल्प किया, और मुरली के समय तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था, मुरली पूरी हुई और गए क्या और दिखा तो पूरा एकदम मतलब बाढ़ आ गई एकदम पुरानी यादों की, और फिर अपने ही मन को समझाते रहे कि रोज थोड़ी मिलता है ये ये तो कभी कभी मिलता है, और ये तो ब्रह्मा भोजन है, मैं ब्रह्मा भोजन का अनादर नहीं कर सकता, दो तो खाया था। जैसे एक व्यक्ति होता है रोज शराब पीता है, रोज शराब पीता है और रोज पश्चाताप करता है, एक बार सोचता है बहुत हो गया अब मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, और वो जो शराब खाना होता है मधुशाला बार, उसके पास से गुजरना उसका काम होता है, उसका रास्ता ही वही है हर दिन का, तो वो एक दिन सोचता है उसके पास से गुजरूंगा पर देखूंगा भी नहीं उधर, कुछ भी हो जाए आज तो पूरा जीवन मरण का प्रश्न है, और वो उसके पास से गुजरता है, बड़ा कंट्रोल करता है अपने आप को और क्रॉस करके यहां तक पहुंच जाता है, और इतना खुश हो जाता है क्योंकि असंभव कर दिया उसने, ऐसा उसने कभी नहीं किया था, वहां से गुजरे और अंदर ना जाए शराब पीने हुआ ही नहीं था, पर जैसे ही सामने पहुंचता है और उसको क्रॉस करता है इतना खुश हो जाता है, कहता है मेरे मन तूने असंभव को संभव कर दिया, और आज मैं इतना खुश हूं कि इसी खुशी में चल आज तुझे सेलिब्रेट करता हूं, और वो दुगुना पी लेता है उस दिन जो सुबह से संकल्प कर रहे थे कि आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तो नहीं, उस दिन डबल खा लिया और थोड़ा सा कमरे में भी लेके गए दोपहर के लिए। बड़ी उपद्रवी है इंद्रिय, एक एक इंद्रिय इतना आसानी से नहीं मानती है, बड़ा पुरुषार्थ चाहिए इन सबको जीतने के लिए। तो ये है पांच कर्मेंद्रिय। फिर है पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच ये ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय। पांच कर्मेंद्रिय कौन सी? दो हाथ, दो पैर, मुख बोलना, उपस्थ, उपस्थ अर्थात ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, और गुदा, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, डेफिकेशन। ऐसी ये पांच, इनको कहा जाता है कर्मेंद्रिय। बाबा तो एक ही शब्द प्रयोग करते हैं मुरली में, कर्मेंद्रियों को जीतो। कर्मेंद्रियों जब बाबा कहते तब उसका अर्थ होता है ज्ञानेंद्रिय, पर शास्त्रों में जो लिखा है पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय। तो ये जो पांच है, हाथों को जीतना, हाथ तू क्या कर रहा है, पांव तू क्या कर रहा है, मुख तू क्या बोल रहा है, तो बोल को संयम, इन सबको नियंत्रित करना। जननेंद्रिय, उनका संयम कहा जाता है सबसे मुश्किल है सभी कर्मेंद्रियों में। आत्मा, आत्मा में कर्मेंद्रिय तो अलग है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, परंतु हमको अपने आप को अलग कर देना है उनसे, कि मैं अलग, ये तीन अलग। आत्मा में ही मन है, आत्मा में ही बुद्धि, आत्मा में ही संस्कार है, फिर भी साक्षी भाव धारण करके जैसे ये अलग, ये मैं अलग, ये भी एक अभ्यास है, ये विचार अलग है, ये कोई और है, जैसे मैं झाड़ हूं और ये विचार पक्षी है यहां आके बैठ रहे, जैसे मैं रास्ते पर खड़ा हूं और ये क्लाउड्स, बादल आ रहे जा रहे, ये विचार बादल है, मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, ये साक्षी भाव का भी अभ्यास है। तो पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, कितने हो गए? पांच पांच दस और तीन तेरह। उसके बाद में पांच प्रकृति के तत्व, सभा में उनको भी उधर बिठा दो कि हे तत्व तुम कुछ भी करो, बारिश कितनी भी आ जाए पर अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, कोई कारण नहीं देंगे बारिश की वजह से। हे धूप, जल, वायु, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये आकाश तत्व, हम प्रकृति जीत है, इनको जीते हुए है, इनकी कोई भी हलचल हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। प्राकृतिक आपदाओं के समय में अचल अडोल रहना है, भूकंप आ जाए या कुछ भी होने दो, अतिवृष्टि, फैमिन, कुछ भी हो, हम अचल अडोल है, तो हम इनके भी स्वामी हैं। तो पांच तत्वों को भी वहां रख देना सभा में। उसके बाद में पांच विकार, पांच विकार भी, हाथ में बंदूक नहीं, बेड़ी आए उनके, उनको हमने बंदी बना के रखा है ना, अपराधी है वो, अभी उनको सजा सुनानी बाकी है, तो वो भी खड़े हैं पीछे बेचारे, बंधन में है, अभी पकड़ लिया है उसको हमने, वो हमारे वश में है, अब वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते, तो वो हमारे अधीन है। उसके बाद में कितने हो गए? 23। उसके बाद में इस सभा में संबंध को रखना है, रिलेशनशिप, कि मेरे संबंध कहीं विकारी तो नहीं, संपर्क कहीं किसी आत्मा के साथ देहभान वाले तो नहीं, किसी आत्मा के साथ जो बातें हैं वो जो देहभान की तो नहीं, जो मैसेजेस, कॉल्स, मैसेजेस जो भी है, कम्युनिकेशन विकारी तो नहीं, मोह वाला तो नहीं, बाकी सबसे नष्ट मोह है पर मेरा जो बेटा है उससे सबसे ज्यादा मोह है, उसका मोह छूटता नहीं है, एक्सक्लूडेड, एक ही तो बेटा है,
उससे भी ज्यादा बेटे के बेटा।
बाकी दुनिया से तो हम नष्ट मोह है, नष्ट मोह पर अभी अभी क्लास करा क्या है, सबको बड़ा जोर से बड़ा धुआंधार भाषण करा दिया, सबसे मोह हटा दो, और घर पे पहुंचते क्या हुआ, बेटा आया नहीं, बेचैनी, ढूंढो उसको कहां है, क्या हुआ, क्या उसको बुखार है, हलचल। तो संबंधों को भी रखो इस सभा में, कि संबंध निर्विकारी है, संबंध डिटैचमेंट वाले है, संबंधों में नष्ट मोह है या फिर लगाव है। उसके बाद में रखो चलन, बिहेवियर, चलन को भी रख दो उसमें, इस सभा में देखो मेरी चलन कैसी थी, आसुरी थी या देवता ही थी, किस तरह का व्यवहार किया, मीठा व्यवहार था या कटु था, बदले वाला था, विकारी था, क्या था, इसको भी रख देना है इस सभा में। तो कितने हो गए, दो मिला के अभी 25। उसके बाद में वृत्ति, उस वृत्ति को भी रखो, मेरी वृत्ति कैसी थी, विकारी निर्विकारी। वृत्ति बड़ी सूक्ष्म बात है, मन अलग है वृत्ति अलग है। उसके बाद में होता है स्वप्न, स्वप्न किस तरह के आ रहे हैं मुझे। कई लोग कहते हैं हमारा दिनचर्या बहुत अच्छी है पर स्वप्न विकारी आते हैं। कई लोग कहते हैं स्वप्न हमको, दिनचर्या में किसी से भय नहीं पर रात में डरावने सपने आते हैं, ऐसा डर लगता है पता नहीं, हर दिन उठता हूं तो धड़ 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 ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया मेरे साथ। हाँ, क्या कर रहे, जनरेटर की तरह आवाज। हर दिन उठता हूं तो पता नहीं कहां से स्वप्न आते हैं जिनका कोई संबंध नहीं, ऐसी ऐसी चीजें दिखती है रात में, और हर दिन अजीबोगरीब स्वप्न दिखते जिनका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ऐसे ऐसे भयानक डरावने स्वप्न दिखाई देते। दिखाई दे रहे मतलब आत्मा में सब छिपा है, वही निकलता है बाहर, आत्मा में अभी भी बड़ा गंदगी भरी है, इसलिए तो स्वप्न ऐसे निकलते, नहीं तो निर्विकारी आत्मा के स्वप्न भी शुद्ध पवित्र सत्व प्रदान होंगे, या तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे भी तो उसमें भविष्य की झलक होगी कि ये होने वाला है, पहले ही पता चल जाएगा, ऐसा भी होता है। तो स्वप्नों को भी चेक करना है। स्वप्न के भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ स्वप्न होते हैं जो दिन में जो कुछ किया वो दिखता है, जो दबा के रखा है। एक स्वप्न होते हैं जो पूर्व जन्म के होते हैं, जो अभी दिखता है। एक स्वप्न होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, कुछ भी दिखता है उसमें। एक स्वप्न होता है फ्यूचर में जो होने वाला है वो पहले ही दिख जाता है, किसी किसी को होता है ऐसा, सबको नहीं। जैसे विदेश की एक महिला थी, सुबह उठी और उसने कहा कि मैंने शाम के न्यूज़पेपर में अपने डेथ की न्यूज पढ़ी। लोगों ने उसको समझाया तुम तो जिंदा हो, वो कहते नहीं, शाम में जो न्यूयॉर्क टाइम पब्लिश होने आने वाला है उसमें मैंने देखा कॉलम, नीचे के कॉलम में मेरी डेथ और मैं मरी हूं। लोग उसको समझाते ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर उसकी शाम को, और वो शब्द भी बताती इन शब्दों में लिखा था, और दोपहर को ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और शाम के न्यूज़पेपर में वो खबर आती है, वो पहले ही देख लेती है। ऐसा भी कहीं कहीं हुआ है कुछ कुछ आत्माओं के साथ, जो पहले ही अपनी मृत्यु को देख लेते, पहले ही दूर कहीं कोई घटना होने वाली है उनको यहां पता चल जाता है। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जैसे जगदीश भाई जी ने भी बताया, महात्मा गांधी की मृत्यु से एक हफ्ता पहले उनको पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है, पर उन्होंने बोला नहीं, नहीं तो लोग कहेंगे इसका भी हाथ है। उन्होंने खुद लिखा है ऐसा। बाबा के लिए भी और खुद के लिए भी पता था उनको। हाँ, स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी है, 1902 एज 38, ये उम्र में उनको पता चल गया कि बस अब मेरा अंत आने वाला है। एक हफ्ता पहले से जैसे पंचांग लेके बैठ गए, कहां कब जाऊं, उसमें डेट ढूंढ रहे, और बराबर उस दिन बैठ गए समाधि में, नाक से जैसे खून आ गया, कुछ सेरेब्रल हिमरेज हो गया और शरीर छोड़ दिया, पर उनको पता था मैं जाने वाला हूं, इस तरह जैसे जीवन का कार्य पूरा हुआ। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं जिनको पहले ही पता चल जाता है जाने वाले। तो स्वप्नों को भी क्या करना है, देखना है। फिर उसके बाद है दृष्टिकोण, एटीट्यूड, हमारा पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड कैसा रहा, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव रहा कि निगेटिव रहा, दिनचर्या में किस तरह का एटीट्यूड रहा, वो भी देखना है। तो ये दो बातें। उसके बाद में परिस्थिति, समस्याएं और विघ्न, सरकमस्टांसेस उसको भी खड़ा करना कि वो परिस्थिति में मैं आत्मा राजा किस तरह से व्यवहार करती हूं। जो परिस्थिति आई अब वो मेरे सामने परिस्थिति बहुत छोटी है, मैं राजा हूं। जो समस्या है जीवन की बहुत छोटी है समस्या है, मैं पर समस्याओं से बड़ा हूं। जो विघ्न है जीवन के बहुत छोटे हैं, दरबार में उस विघ्न को भी खड़ा कर देना कि ये विघ्न सबसे ज्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये अब राज्यसभा में बंदी बनकर मेरे सामने खड़ा है और मैंने उसे जीत लिया है। और चौथी बात, 32वीं और आखिरी, कार्मिक अकाउंट, कर्म भोग। हम जो कहते हैं मेरा कर्म भोग है, ग्रहचारी है, ये है वो है, उसको भी उस सभा में बिठा देना कि अब वो मेरे अधीन है, मैं तो राजा हूं। अब इनके कोई भी प्रश्न, मेरे पास सब प्रश्नों के उत्तर है क्योंकि मैं राजा हूं। जैसे वो छोटा बच्चा हर प्रश्न का उत्तर दे देता है और उसको नतमस्तक कर देता है, उसी तरह मैं आत्मा राजा मालिक हूं, शक्तिशाली हूं। तो ये है स्वराज्य दरबार। वो दिखाया विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन, 32 ही। वैसे ये भी सिंहासन 32 ही है, इसमें उज्जैन में। तो सिंहासन 32 ही में वो राजा बहुत जब जब चढ़ने जाता है सिंहासन पर, एक एक पुतली खड़ी हो जाती है, कहती है कहां जा रहा है, तुमको पता है किसका सिंहासन है। और फिर वो एक कहानी सुनाती है और फिर राजा भोज को कहती है इतना महान था विक्रमादित्य, क्या तुम में ऐसे गुण है। वो पीछे हट जाता है बेचारा, हर बार पीछे हटता है। लास्ट 32 पुतलियां उसको हरा देती है और कहती है, वो कहता है मैं योग्य ही नहीं हूं, पर लास्ट में सभी पुतलियां कहती है तुम्हारी नम्रता देखकर तुम भी विक्रमादित्य जैसे महान हो, तुम चढ़ो इस सिंहासन विराजमान हो जाओ। तो ऐसी ये 32 मंत्री या सभासद या कारोबारी हमारी सभा में कौन कौन से, सबसे पहले मन बुद्धि संस्कार, उसके बाद में 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, उसके बाद में 5 विकार और 5 तत्व, उसके बाद में संबंध, उसके बाद में चलन, उसके बाद में वृत्ति दृष्टिकोण, उसके बाद में स्वप्न, उसके बाद में परिस्थितियां समस्याएं प्रॉब्लम्स विघ्न ऑब्स्टेकल्स, और उसके बाद में कर्म भोग। ये सारा जैसे सभा है और मैं आत्मा राजा हूं। तो बाबा ने कहा द्वापर युग से तुमने क्या कहा, क्या किया, गड़बड़शाला में चक्र लगाए, भूल भुलैया, गड़बड़शाला में पाव रखना अर्थात भूल भुलैया में खो जाना। अब स्वराज्य अधिकारी बनो, अब राजे बनो, स्वयं के राजे बनो और शासन करो, कोई भी कर्मेंद्रिया तुम्हें अपने वश में ना करे, ऐसा रोज दरबार लगाना है। अच्छा, ओम शांति।
सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। जग संग